ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में अभी तक 57% मात्र हुआ धान का रोपनी। सूखा पड़ने से धनुषा, महोतरी, सिरहा और सप्तरी जिला अधिक प्रभावित। इलाम सदर मुकाम के झापा के बिरता मोड़ जोड़ने वाली पुआ नदी में बेली ब्रिज निर्माण। बेली ब्रिज का निर्माण के बाद 36 किलोमीटर दूरी हुआ कम। बीते जेठ 23 गते को हुए आगलागी से ध्वस्त बाजुरा के व्यापारिक केन्द्र बामका बाजार के पुनर्निर्माण सम्पन्न। और पाकिस्तान में बम से खेल रहे थे बच्चे, तभी हो गया विस्फोट, 5 की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भेंट वार्ता किया है। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में हुए भेंट में प्रधानमंत्री ओली ने तुर्कमेनिस्तान के आवाजा शहर में आयोजित होने वाली भू परिवेष्टित विकासशील राष्ट्रों का तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन में नेपाल के सहभागिता के बारे में जानकारी दिए। ये जानकारी राष्ट्रपति के सचिवालय ने दी। प्रधानमंत्री ओली इसी श्रावण 20 से 23 गते तक आयोजित होने वाली सम्मेलन में सहभागी होने के लिए उस ओर कल प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि वाम लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रज और शहीदों का संकल्प पूरा करने के लिए दृढ़ता के साथ लगना होगा। आज तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा 28वीं तुलसीलाल स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश शांतिपूर्ण आंदोलन और समृद्धि का सपना पूरा करने में आज के पुस्ता को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना होगा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष भी रहे प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि तुलसीलाल ने राजनीति में दिखाए हुए आदर्श को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेना पड़ा। मौके पर प्रतिष्ठान द्वारा संचालित काठमांडू घाटी व्यापी माध्यमिक विद्यालय स्तरीय हाजिरी जवाब प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वहीं प्राध्यापक श्याम सुंदर शेरपा का बुद्ध के विचार संबंधी पुस्तक विमोचन किया गया था। मध्य प्रदेश के जिलों में धान खेती के कुल क्षेत्रफल में से 57.27% मात्र धान का रोपनी हुआ है। मध्य प्रदेश में 5,42,580.78 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से हर साल 3,72,645 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान खेती हुआ करता था, जिसमें अभी तक 2,13,348.95 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान का रोपनी हुआ है। ये जानकारी मध्य प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय ने दी। मध्य प्रदेश के 12 परसा, रौतहट और सरलाही में धान का रोपनी संतोषजनक है, फिर भी धनुषा, महोतरी, सिरहा और सप्तरी में सूखा जमीन के अधिक प्रभाव पड़ा है। ये जानकारी मंत्रालय के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अविनाश झा ने दी। प्रदेश के अधिकांश किसानों ने श्यालो, डीप बोरिंग तथा कम जमीन में सतही सिंचाई के प्रयोग कर धान का रोपनी किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 18 करोड़ रुपए के लागत में स्यालो ट्यूबवेल वितरण का प्रक्रिया शुरू किया है। मध्य प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय ने सूखा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के 8 जिलों के किसानों को स्यालो ट्यूबवेल वितरण का प्रक्रिया शुरू किया है। प्रदेश के 8 जिलों धनुषा, महोतरी, सरलाही, रौतहट, बारा, परसा, सिरहा और सप्तरी में पानी के अभाव में खडेरी से पीड़ित किसानों को संबंधित कृषि ज्ञान केंद्र के कार्यालय से स्यालो ट्यूबवेल वितरण का प्रक्रिया शुरू किया गया है। यह जानकारी मंत्रालय के प्रवक्ता सरोज चौधरी ने दी। बता दें कि जनता की आवश्यकता तथा प्राथमिकता के आधार पर 1,200 स्यालो ट्यूबवेल वितरण किया जाएगा। यह जानकारी प्रवक्ता सरोज चौधरी ने दी। इलाम के सदर मुकाम से झापा के बिरता मोड़ जोड़ने वाली छोटे दूरी का केचना कंचनजंघा मेची कॉरिडोर सड़क अंतर्गत पुआ नदी में बेली ब्रिज का निर्माण हुआ है। संघीय सरकार के 1,35,00,000 रुपए के लागत में 48.6 मीटर लंबा बेली ब्रिज का निर्माण हुआ है। ये जानकारी सड़क डिवीजन इलाम के सूचना अधिकारी इंजीनियर अर्जुन घिमिरे ने दी। इलाम नगर पालिका 9 और 11 जोड़ने वाली पुआ नदी में पहली बार बेली ब्रिज का निर्माण होने पर स्थानीय बासिंदा और झापा इलाम पांचथर तापलेजुंग में आने जाने वाले पारवहन के लिए छोटा और सुरक्षित रास्ते का विकल्प मिल गया है। बता दें कि इंजीनियर घिमरे के मुताबिक बेली ब्रिज के निर्माण होने से 36 किलोमीटर का रास्ते का दूरी कम हुआ है। बाजुरा के मुख्य व्यापारिक केंद्र बामका बाजार के पुनर्निर्माण का काम संपन्न हुआ है। बीते जेठ 23 गत्ते को हुए आगलागी से ध्वस्त हुए बाजार के करीब 2 महीने के बाद पुनर्निर्माण का काम संपन्न हुआ है। बूढ़ी गंगा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित बामका बाजार सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय तथा विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से पुराने स्वरूप में पुनर्निर्माण किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबै को यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेस में युवा आकर्षण बढ़ने से लोकतंत्र मजबूत होगा। नेपाली कांग्रेस विराटनगर वार्ड नंबर 4 के वार्ड समिति द्वारा आयोजित क्रियाशील ज्येष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में उन्होंने ये बात कही। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सरकार योजनाबद्ध रूप में जनता के चाहना अनुसार आगे बढ़ रही है। नेकपा एमाले गंडकी प्रदेश कमेटी की पोखरा में आज से शुरू 4th पूर्ण बैठक में मंत्री गुरुंग ने कहा कि अर्थतंत्र और शासन प्रणाली को सरकार ने व्यवस्थित किया है और जनता के अपेक्षा अनुसार परिणाम देने के हिसाब से काम कर रही है। एमाले के उप महासचिव भी रहे मंत्री गुरुंग ने कहा कि देश के आवश्यकता अनुसार पार्टी नेतृत्व क्षमता को और भी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए विधान संशोधन का प्रस्ताव आया है। वैदेशिक रोजगारी के बहाना में भारत पहुंचाए गए 7 नेपाली किशोरियों को सीमावर्ती पानी टंकी नाका से भारतीय पुलिस द्वारा उद्धार किया गया है। उन किशोरियों को भारत पहुंचाने वाले 2 पुरुषों को मानव तस्करी किए के अभियोग में भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जानकारी माइती नेपाल के कोशी प्रदेश संयोजक गोविंद घिमरे ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक पुरानी मोर्टर सेल के साथ खेलने के दौरान उनमें विस्फोट हो गया। हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। यह घटना लक्की मरबत जिले में हुई जब बच्चों के एक समूह ने पहाड़ियों में एक मोटर सेल खोजा और उसे अपने गांव में ले आए। पुलिस के अनुसार जब बच्चे मोटर के साथ खेल रहे थे तब वह डेटोनेट हो गया। उन्हें पता नहीं था कि वह बम से खेल रहे हैं। विस्फोट की सूचना के बाद रेस्क्यू टीमें घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया कि 12 घायलों में से अधिकांश बच्चे हैं जिसमें से कुछ की हालत गंभीर है। यूक्रेन ने कीव पर रूसी हमले के जवाब में शनिवार को रूस के भीतर बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के दावे के अनुसार इस हमले में रूस की एक बड़ी तेल रिफाइनरी सैन्य हवाई पट्टी और इलेक्ट्रॉनिक सामान का कल कारखाना को निशाना बनाया गया। हमलों में 3 लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। इसी बीच गुरुवार तड़के कीव पर रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनमें कई की हालत गंभीर है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले के यूक्रेनी दावे की पुष्टि नहीं की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में अभी तक 57% मात्र हुआ धान का रोपनी। सूखा पड़ने से धनुषा, महोतरी, सिरहा और सप्तरी जिला अधिक प्रभावित। इलाम सदर मुकाम के झापा के बिरतामोड़ जोड़ने वाली पुआ नदी में बेली ब्रिज निर्माण। बेली ब्रिज का निर्माण के बाद 36 किलोमीटर दूरी हुआ कम। बीते जेठ 23 गते को हुए आगलागी से ध्वस्त बाजुरा के व्यापारी केंद्र बामका बाजार के पुनर्निर्माण संपन्न। और पाकिस्तान में बम से खेल रहे थे बच्चे, तभी हो गया विस्फोट, 5 की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।